चुप हैं। आया, सचमुच आ गया। तो अगर हमें ये याद आता है हम देवता थे, तो हमारे कौन से संस्कार इमर्ज हो जाते हैं? दैवी संस्कार, पवित्र संस्कार। जिसके संस्कार बदल नहीं रहे, इसका अर्थ है उन्हें ये याद नहीं रहता कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। इसे स्मृति कहते हैं। जिसको बाबा ने सहज भाषा में कहा, पांचों स्वरूपों को याद करो। पांचों स्वरूप हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, और बहुत सारे स्वमान याद दिलाए जो हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। हमें अपनी शक्तियों की भी याद दिलाई। किसके बच्चे हैं हम? तो क्या होगी हमारे अंदर? बहुत शक्तियां। जैसे शेर का बच्चा कमजोर तो नहीं होगा ना, चाहे वो 10 दिन का ही बच्चा हो और भेड़ों के झुंड में आज चला जाए मेजर साहब, सारी भाग जाएंगी। भाग जाएंगी या नहीं? यह सोचेंगी ये तो बच्चा है, कुछ थोड़ा ही कहेगा हमें। क्या होगा? माताओं ने देखा है कि शेर का बच्चा, वो भी वैसा ही होता है। हमने देखा एक जगह गिरनार के जंगलों में शेर देखने गए, खुली गाड़ी में ले जाते हैं ना वो, तो 5 थे, 2 माँ बाप और 3 बच्चे। लेकिन गाड़ी देखते ही बच्चे अपनी माँ के पास जा बैठे, बचपन तो उनमें भी है ना, और शेर पीछे खड़ा रहा सुरक्षा के लिए। कोई तो उतर नहीं सकता था गाड़ी से, लेकिन ये देखने में आया बिल्कुल जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं माँ के पास चले जाते हैं, ये भी 3 माँ के पास चले गए और शेर साइड में खड़ा रहा। पिछले साल भी हमने देखा, हम इधर से आ रहे थे, पूरा गिरिनार का जंगल पार करना था, तो हमने वो सीमा पार कर ली जहाँ शेर होते हैं। रात हो गई थी ये टाइम, तो दूर से दिख रहे थे 4 कुछ खड़े हैं सड़क पे। हमने सोचा वो सीमा तो पीछे छूट गई, 1 किलोमीटर पीछे छूट गई थी, गाय चर रही होंगी, हमारी गाड़ी ऐसे ही तो वहां पहुंच गई 10 सेकंड में। देखा 4 शेर हैं। हमें देखते ही उनमें से 2 शेर के बच्चे और 1 माँ ऊपर चले गए, थोड़ा सी ऊंचाई थी 10 फुट की, और शेर वहीं खड़ा रहा सुरक्षा में उनकी। हम सब उनके पास से गुजरे, उसने गाड़ी भी धीमी कर दी, हम गुजरे, वो खड़ा रहा बस। हमारे पीछे एक मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा था, वो भी आराम से गुजरा। हमने आगे जाके रोका, उसको हाथ दिया और उससे पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? काम तो रोज यहां से गुजरते हैं, ये रोज खड़े रहते हैं, ये किसी को कुछ कहते नहीं, जब तक इन्हें छेड़ा न जाए वो कुछ नहीं कहेंगे किसी को। तो हम किसके बच्चे हैं? हमारे अंदर शक्तियां हैं, ये बाबा ने याद दिलाया। हैं या नहीं? और क्यों भूले रहते हैं हम अपनी शक्तियों को? सोच लेना है। क्योंकि हम उसको भूले रहते हैं जिसके हम बच्चे हैं। अगर हमें अपनी शक्तियां याद रहें तो छोटी मोटी बातें कैसे लगेंगी? जैसे मच्छर और मक्खियां, स्प्रे कर देते हैं ना, सारे मच्छर मर जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं लगेंगी। वो शक्तिशाली हम हैं न कि बातें, शक्तिशाली हम हैं न कि समस्याएं। सभी भाई लोग ध्यान दें, कौन है शक्तिशाली या समस्याएं? समस्या चाहे कितने भी पावरफुल हो, अनुभव करके देख सकते हैं सभी। आप इस स्मृति में आ जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। योग तो तब लगेगा नहीं, केवल इस नशे में आ जाओ। दिन में कई बार ये याद कर लो और आपको पता चलेगा समस्या आप ही समाप्त हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। आज भी मुझे एक बहुत अच्छे दो अनुभव सुनने को मिले अभी अभी किचन में। सेवाधारी माताएं आई हुई है ना ग्रुप में, तो एक आई मुझे बात करनी, मैंने कहा चलो करो, आवाज तो किचन में थी। कहा हमारी फैक्ट्री मुंबई के पास कहीं होगी, नाम भी बताया। कहा उस पे एक बदमाश ने कब्जा कर लिया था, उसने अब तक 10 फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लिया है और सबसे बहुत बड़े बड़ी संपत्ति लेके कई कई करोड़, फिर छोड़ता है। उसने फोन किया होगा, मुझे तो याद नहीं रहता। तो ये बाबा की विधि मैंने उसको सिखाई, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से 1 घंटा रोज योग करना 3 मास। इन्होंने योग किया और बताया आज मुझे कि 3 मास के बाद उसने खुद हमें फोन कर दिया कि आप अपनी फैक्ट्री ले लो। कितना अच्छा अनुभव है, दे दिया उसने। तो ये इतनी अच्छी शक्ति है स्मृति स्वरूप की, इसके आगे कोई भी समस्या ठहरेगी नहीं। इसलिए स्मृति स्वरूप स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। आज मुझे कुछ बातें याद आ रही थी बाबा की। जब दादी थी तो दादी ने एक दिन बाबा को कहा, बाबा आए हुए थे अव्यक्त बाबा, और दादी तो आगे ही बैठती थी, बाबा को कहा बाबा मुरली के बीच में ही थोड़ा आवाज से कहा तो हम सब सुन लिए कि बाबा अब साक्षात्कार शुरू कराओ ना, बहुत दिन हो गए। जिस दिन साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे तो ये सेवाओं की सब मेहनत खत्म हो जाएगी, सारा संसार हमारे पीछे घूमेगा। हमें दृष्टि दे दो, हमें ज्ञान दे दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो। सतीश हाथ रखाने बहुत आएंगे आपके पास, अब सामान लेने आते हैं फिर कहेंगे सिर पे हाथ रख दो। तो बाबा ने क्या कहा, साक्षात्कार बाप को नहीं कराना है, तुम्हें कराना है। और उत्तर दे दिया बहुत अच्छा, जब तुम साक्षात बाप समान बन जाओगे तो तुमसे साक्षात्कार होने लगेंगे। आज मुझे सवेरे सवेरे ये बात याद आ गई अचानक, बहुत सुंदर ये बात है। हम अपनी स्थिति को स्मृति स्वरूप बनाते चलें और हम ये फीलिंग बढ़ाएं, मैं बाप समान हूं। जैसे शेर का बच्चा शेर ही तो है ना, समान है ना, हम में भी बाबा की बहुत सारी क्वालिटीज हैं ही, हमें केवल उन्हें बढ़ाना है। अगर हम अच्छी अच्छी स्मृतियों का अभ्यास करेंगे और योग अभ्यास को बढ़ाएंगे, जैसे आज की मुरली में था बहुत ज्यादा देही अभिमानी बनो, कितने उत्तर थे देही अभिमानी से, क्रिमिनलिटी समाप्त हो जाएगी, दुख समाप्त हो जाते हैं, जो आजकल की समस्याएं हैं संसार में वो सारी ही लोप हो सकती हैं। तो हम ऐसे बाप समान बने तो संसार में साक्षात्कारों की धूम मचेगी। तो बाबा ने हमें बहुत बातें याद दिलाई और एक बहुत सुंदर बात याद दिलाई है जो सभी भूले रहते हैं। वो लहर फैलनी जरूरी है हमारे संगठन में, और वो ये है 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है और अब घर जाने से पहले 2 शब्द और बोलो, नहीं और कुछ बोलो। सुरेश भाई बोल सकते हैं, हाँ बोलो, ठीक बोल रहे, बन कर जाएंगे ना, ऐसे थोड़ा आत्मा खाली जैसी है वैसे ही चली जाएगी, फुल होकर सारा भाग्य लेकर सर्व खजाने खुद में भरकर फिर जाना है। जाएंगे माता या नहीं, या ऐसे ही चल देंगे, चलो बाबा ठीक है, जो कुछ तुम दोगे ठीक है वही, ऐसे तो नहीं ना। और दूसरी बात इससे पावरफुल बात है, नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात, सब कुछ यहीं छोड़कर। सब कुछ में क्या क्या? पहले तो ये शरीर, इसके बिना तो जाएंगे नहीं, और क्या? थोड़ा सा बोलने दो माताओं को, मेजर साहब मैं माताओं के मुख से बुलवाना चाहता हूँ, क्या क्या छोड़ के जाना है? नहीं सब कुछ नहीं, दो चार बोलो। बच्चे छोड़ के जाना पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं? बच्चों को साथ ले चलेंगे? नहीं, साथ तो ले जा सकते हो, पर जाएंगी तो आत्मा, फिर तो बच्चे रहेंगे नहीं। और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? माताओं ने एक चीज बहुत छुपा के रखी हुई है, पोटली। क्या क्या है उसमें? चलो न बताओ, उसको पास गुप्त रखो। वो भी छोड़नी पड़ेगी है या नहीं? लेकिन माल बहुत मिलने वाला है, जितना आपका सारा खजाना, इतने तो आपके कानों में होंगे, केवल कानों में। तो सब कुछ यही छोड़कर और सब कुछ प्राप्त करके हमें जाना है, दोनों तैयारी करनी होगी। तो इस स्मृति को हम बढ़ाएंगे, ये भी हमारे संगठन में एक लहर चलेगी। बाबा के समय ये लहर चली है, हमने वो लहर देखी है 7 साल, 1-2 साल पहले बाबा से और 7 साल तक बाद में, 9-10 साल ये लहर चलती थी बहुत। सब कुछ छोड़कर, जो इन आंखों से दिखता है कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है। फिर दीदी ने ये लहर चलाई थी, कल था आज था, कल था ना दीदी का भोग, 27, आज क्या 26, 25, 28 के बाबा दीदी ने सभी छोड़ा। दीदी के मुख पर ये बहुत था, कोई बात हुई, क्लास हो रही है, कोई कुछ कुछ बात कर रहे हैं, दीदी फट से कहती थी अरे छोड़ो ना, घर जाना है। तो उनका स्लोगन फेमस हो गया था लास्ट में कि घर जाना है, सब कुछ छोड़ो। किन्हें लड़ाई भी की, दीदी के पास पहुंचे, क्यों लड़ते हो, घर जाना है, सहज समाधान होता था। दीदी के बारे में बताऊं एक बात आपको, दीदी की निर्णय शक्ति बहुत जबरदस्त थी, देर नहीं लगती थी, कोई बात हुई ये करो, बस इतना ही ये करो, और वो परफेक्ट होता था। इस बारे में, इसी के संबंध में बाबा ने कहा था जब दीदी ने शरीर छोड़ा, कि दीदी की ये जो क्वालिटी है ये काम आने वाली है आगे चलकर बहुत। और हम तो समझ गए थे क्या काम आएगी वो, क्योंकि दीदी ने दूसरा शरीर लिया, और दीदी के शरीर छोड़ने पर ही बाबा ने एक रहस्य स्पष्ट किया था कि योग बल से संतान उत्पन्न कैसे होंगी, वो बहुत सुंदर एक रहस्य है। तो हमें बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं, घर चलना है। अगर हमें ये याद रहे तो इस संसार से स्वतः ही वैराग हो जाएगा, जहां जहां हमारी आसक्तियां हैं वो छूटती जाएंगी, जिन जिन चीजों को हमने पकड़ा हुआ है उससे हम मुक्त होते जाएंगे, संपूर्णता बहुत जल्दी आएगी। ये संपूर्णता और कर्मातीत अवस्था इसलिए नहीं प्राप्त हो रही है कि हम सब मेरे सहित हम सब क्या कर बैठे हैं, ज्यादा लगे हुए हैं यहां। अभी यज्ञ में वो वैराग्य की फीलिंग है नहीं, बाबा के समय हमने देखी थी, बहुत जबरदस्त वैराग की फीलिंग। और जिस दिन वो प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन एक एक दो दो साल में आत्माएं संपूर्णता की ओर उठ चलेंगी, और वो होना है, समय कराएगा वो। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि सबको दिखाई देगा कि वैराग के अलावा कोई चारा है नहीं, नेचुरल रूप से वैराग उत्पन्न हो जाएगा, और जो राग सब जगह फैले हुए हैं वो हट जाएंगे। मान लो हम सबके पास कार और मोटरसाइकिल और ये वो है, कल तेल ही नहीं मिले तो गाड़ियां क्या करेंगी, मेजर साहब खड़ी रहेंगे ना शोभा के लिए, म्यूजियम में रख देंगे कि ये उसकी गाड़ी, ये उसकी गाड़ी, ऐसी बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें, आज दवाइयां बहुत मिलती हैं। मैं कहीं अनुभव सुना रहा था कि एक समय था हमारे यज्ञ में न दवाई होती थी, न डॉक्टर, न पैसा। कोई भी बीमार हुआ उसको कहीं जाना नहीं है, या तो किचन की चीजों से अपने को ठीक करो। जानते हैं ना सभी माताएं, माताएं डॉक्टर होती है ना घरों में, ये पिला दो, वो पिला दो, काढ़ा बना दो, तुलसी का पत्ता ले आओ, ये करो वो करो, या योग बल से ठीक करो। बाबा फॉर्मूले भेजा करता था सूक्ष्म वतन से, ये मिला के पिलाओ इनको। आपको इस बात जान के बहुत खुशी होगी कि बाबा अनेकों की बीमारियों के लिए फॉर्मूला भेजता था ऊपर से कि ये बनाओ और इनको खिलाओ, ठीक हो जाएंगे। सुप्रीम सर्जन था प्रैक्टिकल में। तो जब तक दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं, साधन हैं, हमारा ध्यान योग बल की ओर कम है। और जिस दिन ये नहीं रहेगा, तब हर व्यक्ति योग बल से अपने को ठीक करने के अनुभव करेगा ना, उसमें अनुभव होंगे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव उसमें होंगे। मैं एक अनुभव सुनाऊं किसी का। पंजाब में गिदड़वा एक जगह है, ये भटिंडा के आसपास। एक बहन अपने यहां समर्पित, उसके भाई को बोन कैंसर हो गया, ये बात पिछले साल की है। और कैंसर का पता तब चलता है कब, बस जब उसे कहेंगे अब तो मरेगा ये। जब उसको इतनी पीड़ा होने लगी कि जीना मुश्किल हो गया, तब डॉक्टर को दिखाया तो एक दो दिन में समझ में आया कि बोन कैंसर है और हड्डियां गल गल के गिरने लगी हैं। सोचो आप, अंदर की हड्डियां गल गल के गिरने लगी हैं, इसलिए उसको भयानक पीड़ा होने लगी। वो बहन यहां थी, रोने लगी, मेरे पास आई। मैं से अच्छी मिलती जुलती, पुरानी है बहुत, 40 साल हो गए ज्ञान में उसे। तो मेरे को कहा क्या करें, तो मैंने उसको चार चीजें कराई। योग कराया एक घंटा, तुम ही उसके लिए योग करो, क्योंकि उनके परिवार में कोई योग नहीं करता, जो ये इसका भाई था। पानी चार्ज करके यहीं दिया उसको, चार बोतलें, चार ले आई, वो जा रही थी दो दिन में, चार बोतलें पानी चार्ज करके दिया और कुछ और चीजें उसको सिखाई। और आप हैरान होंगे, बाबा की शक्तियों से उसको भी सिखाया कि वो बाबा में विश्वास करे। ज्ञान तो थोड़ा बहुत था ही, परिवार में कई चलते हैं। 8 दिन में उसका पेन पूरी तरह गायब हो गया। जो खाट से नहीं उठ सकता था, 1 मास के बाद वो घूम फिरने लगा। और 3 मास के बाद वो इतना ठीक हो गया कि फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। बाबा की शक्तियां, देखो वहां कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में मैं 4-5 दिन गया टांगे दर्द के लिए, सोचा मैग्नेट थेरेपी ले लूं। 2 ऐसे युवक आ रहे अपनी माता के साथ, युवक लड़की 24-25 साल की, लड़का उससे 1-2 साल कम, लंबे चौड़े अच्छे, दोनों के पैर गए, हाथ जा रहे हैं। कहा ये नई बीमारी निकली है, करोड़ों में से किसी एक को शुरू हुई है, अभी दोनों को शुरू हो गई। मां भी है, मां से मैंने जरा सी बात की, बेचारी को आंसू आ गए, क्या करे वो, 2 जवान बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, लड़की ने भी MBBS किया है, टांग बिल्कुल नहीं चलती, बिल्कुल पतली हो गई, डेड, बिल्कुल चली नहीं सकती, लड़के को शुरू हो गया, लंगड़ा के चल रहा है, हाथ भी डाउन होते जा रहे हैं। तो मैंने उनको भी कल कुछ सिखाया थोड़ा थोड़ा। लड़की की विशेषता ये कि वो खुश है, लेकिन लड़का डिप्रेशन में जा रहा है, कैसे चलेगा मेरा जीवन। मैं आपको एक रहस्य बता दूं, मैंने दूसरे डॉक्टर से बात की कि ये क्यों हुआ होगा इनको। उसने एक बहुत सूक्ष्म रहस्य बताया कि हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हैं वो डॉक्टर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से भी शादी करते हैं। जो महाराष्ट्र के हैं वो जानते हैं ना, कहा ये उसका परिणाम है, ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहन हो गई ना। ये नहीं कि पाप है, पाप की दृष्टि से नहीं, लेकिन इसमें कुछ बॉडी में, बलराम भाई जानते होंगे, कुछ जीन्स का जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, कोई बच्चे अंधे हो जाते हैं उसमें, कोई बहरे पैदा होंगे, लेकिन अभी तक ज्यादा नहीं था, अब ये शुरू हो गया क्योंकि अब शरीर और वाइब्रेशंस बहुत वीक हो गए ना मनुष्य के। तो ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को कितना धैर्य चाहिए, सोचो आप, जिसके दो जवान लड़के बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त नहीं, लेकिन जिएंगे कैसे वो। तो एक 15 दिन पहले करा के गए, वापिस घर गए, फिर हो गया, अब फिर आए हैं कराने 1 मास के लिए। अब उन्हें डर ये है कि फिर हो जाएगा, क्योंकि इसकी दवाई तो कोई है नहीं, एलोपैथी साइंस इसके लिए कुछ नहीं करती, और ये छोटी मोटी थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये वो करा रहे हैं, मालिश आदि आयुर्वेद के कुछ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसी सब परिस्थितियों में योग बल, मैंने उन्हें सिखाया कल कि सीखो योग, अभी उन्होंने कोर्स कर लिया, तीनों ने फिर से कर रहे हैं दोबारा। उसकी मां को मैंने बहुत कहा तुम राजयोग सीखो तो तुम इनके लिए कुछ कर सकोगी, क्योंकि राजयोग अगर वो इनको इनके लिए करती है 1-1 घंटा, तो इनके वो विकर्म विनाश हो जाएंगे ना, जिनके कारण ये स्थिति आई है, और काफी इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए हर परिस्थिति की दवाई योग बल, स्वमान की स्थिति, अच्छा स्मृति स्वरूप होना, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना, और थोड़ा समय आएगा जब हम सभी ब्राह्मणों को भी आभास हो जाएगा कि और कोई चीज मदद नहीं करती, पैसा है करोड़ों रुपए, जैसे इनका केस, पैसे वाले ये भी, पैसा कितना भी हो लेकिन पैसा करेगा क्या, पद पोजीशन कितनी भी बड़ी हो वो पोजीशन करेगी क्या। तो ऐसे में मनुष्य को या तो काम आते हैं उसके पुण्य कर्म या योग बल। तीसरी बात, क्षमा याचना, जिन आत्माओं को पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, उनके वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं, उनसे क्षमा याचना। एक बात आप सबके लिए, किसी के परिवार में ऐसी बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम अपने कुछ पुण्यों का दान उन्हें कर सकते हैं संकल्प से। मान लो आप संकल्प करें, आप सेवा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, हम 1 मास के अपने पुण्य इस आत्मा को अर्पित करते हैं, ऐसा अभ्यास, इससे उन आत्माओं को उस समस्या से बाहर निकलने में बहुत मदद मिल जाएगी। तो हम सभी स्मृति स्वरूप होने की प्रैक्टिस करें। बहुत सारी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, उनकी लिस्ट बन सकती है कम से कम 25, जो बहुत सुंदर हैं। तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितनी पवित्र आत्माएं हो, तुम कितनी महान आत्माएं हो, तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करता है, बहुत बड़ी चीज है ये। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम्हारी जड़मूर्तियों से भी दूसरों को दुआएं मिल रही हैं, उनके विघ्न नष्ट हो रहे हैं, उनके कष्ट खत्म हो रहे हैं, तो तुम में कितनी पावर होगी जिनकी जड़मूर्तियां ये सब कर रही हैं, ये याद दिलाता है बाबा हमें। हमें इसको याद करना है, योग अलग, ये अलग, इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी। क्लियर है ना सभी को? और जब ये शक्तियां हमारी जागृत रहेंगी तो हम विभिन्न परिस्थितियों में अचल अडोल रह सकेंगे। अचल अडोल स्थिति बहुत बड़ी चीज है। बाबा का एक महावाक्य और आपने सुना होगा इस संबंध में, तुम अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठो तो अनेक समस्याएं इस आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। यही बात बाबा ने साक्षी भाव के लिए कही, तुम साक्षीपन की सीट पर बैठो तो अनेक समस्याएं सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। क्यों? ये भी सोच लें, क्यों? किसी के आगे एक समस्या आई तो मन बहुत विचलित हो जाता है, मन परेशान हो जाता है तो हमारी सारी शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। जो शक्तियां समस्याओं को हल करनी चाहिए वो नष्ट होने लगी। इसलिए अगर हम निसंकल्प हो जाएं, अपनी स्थिति को हिलाएं नहीं, तो हमारी शक्तियां उन परिस्थितियों को नष्ट कर देंगी। तो अचल अडोल, इसके लिए भक्ति में एक चित्र है जो हमारा है। कौन सा? अंगद का भी है और बताओ, हनुमान का भी है और नहीं, अचल अडोल का बोलो। बहुत अच्छा है, जो आज से सबको बहुत याद करना है ये स्मृति से कि ये मेरा स्वरूप है। विष्णु जी से शैया पर लेटे हुए हैं, छत्र छाया किसकी? पांच पांच महासर्प, पांचों विकार वश में हो गए, छत्र छाया बन गए। जो शत्रु थे, जो काटते थे, जो नष्ट करते थे, जो जहर फैलाते थे, जो जीवन को अशांत करते थे, अब वो कंट्रोल में आ गए। उस पर हम सो सकते हैं, उस पर हम आनंद से रह सकते हैं। दूसरा, सागर में बहुत लहरें हैं लेकिन विष्णु जी बिल्कुल मस्त, उन्हें कुछ पता नहीं कि लहरें भी चल रही हैं क्या। अजल अडोल, ये हमारी स्थिति है। तीसरा, गीता ज्ञान में मग्न है। चौथा, अब ध्यान से देखो, विष्णु को कहते हैं पालनहार, जैसे वहीं से सबकी पालना कर रहे हैं, सारे संसार की सबको देख रहे हैं वहीं से। और पांचवी चीज जो आपको ख्याल नहीं होगी, लक्ष्मी चरणों में, लक्ष्मी माना धन संपदा। जिसकी स्थिति विष्णु समान अचल अडोल होगी, अथाह धन संपदा उसके चरणों में। हमें धन संपदा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, धन संपदा हमारे चरणों में आ जाएगी। जिसको भी धन संपदा की कमी पड़ रही हो, वो विष्णु समान बन जाए, कमी पूरी हो जाएगी। लक्ष्मी आगे पीछे रहेगी, चरण दबाएगी। चरण दबाने का अर्थ है सेवा में आ गई, सारी धन संपदा सेवा में हाजिर। तो हम इस स्वरूप को याद करेंगे। और ये बड़ी सूक्ष्म बात है, जैसे जैसे किसी आत्मा को ये फील होता चले, ये मेरी स्थिति का यादगार है, तो वही स्थिति बनती जाएगी। ये तो कोई और है, भक्ति में तो भगवान ही कहते हैं ना, सबसे बड़ा, महादेव से बड़ा, ब्रह्मा से बड़ा, लेकिन तीनों के ऊपर भी तो कोई होगा ना। ये किसी ने सोचा नहीं, सोचते थे जरूर लेकिन पता नहीं चलता था। उत्तर था एक उनके पास, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर तीनों का मालिक महाविष्णु है। नहीं, शिव का तो ज्ञान नहीं था ना, महाविष्णु, उसका ये साकार स्वरूप विष्णु, महाविष्णु है, बहुत तेजस्वी। अब पता चला ना बाबा से कि वो तो शिव बाबा है, निराकार सर्वशक्तिवान। तो हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना लक्ष्य बना लें। इसमें हम दूसरा प्रयोग करेंगे, ज्ञान की कुछ बातें यूज करेंगे। इसमें ज्ञान में भी पहले ड्रामा का ज्ञान, फिर बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान क्या? कि बाबा मेरे साथ है, हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। उसने कह दिया है तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। उसने कह दिया है जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। इसमें विश्वास, इसका प्रयोग करना, ड्रामा का ज्ञान। मेरे साथ जो कुछ होगा अच्छा होगा, इसमें बहुत विश्वास कि हम भगवान की छत्र छाया में हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, ये तो थोड़े से काले बादल हैं, हट जाएंगे। ये विश्वास, ऐसी धैर्यता, इसकी बहुत जरूरत है। इससे अचल अडोल स्थिति बहुत आएगी। और भी ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, ड्रामा के ज्ञान की, जिसको हम यूज करेंगे, पर मुख्य बात ये, ड्रामा के ज्ञान को यूज करके हम अपने मन को निर्संकल्प बनाएं, निश्चिंत बनाएं, ताकि हम बहुत शक्तिशाली बन जाएं। जो निश्चिंत हैं वही बहुत शक्तिशाली हैं, और जो चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, वो बहुत कमजोर हैं। यही बात सबको याद रखनी, माताएं खास याद रखें, क्योंकि माताएं घरों में रहती है ना, एक चिंता लग गई तो वही चलती रहती है, वही चलती रहती है सारा दिन। भाई लोग बाहर रहते हैं तो बातचीत में कई चीजें भूल जाती हैं, बदल जाती हैं। चिंताएं और परेशानी हमें कमजोर करती हैं, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, पर एक अनुभव मुझे याद आ रहा है, कल से एक का मुझे फोन आता है, कल भी आया आज भी आया, शादी हुई, 4 साल ही हुए थे, बनी नहीं, लड़की बहुत तेज आई, एक लड़का, अब उस 3 साल का लड़का उसको लेके अपने घर चली गई, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। वो बेचारा बोल रहा था, ज्ञान में अभी आया 4 मास से, कहा सबको तंग करती थी और ये कह के गई तुम सब मुझे बहुत तंग करते हो, मैं जा रही हूं, कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। एक लेसन सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दूसरे को तंग करता है उसे यह आभास नहीं रहता कि वो किसी को तंग कर रहा है, उसे लगता है सब मुझे तंग कर रहे हैं। फिर ये बड़ा परेशान था, मैंने कहा ज्ञान में क्यों आए तुम, कह रहे भाई बहुत परेशान हुआ, वो मेरी मिसिज चली गई, मैं ज्ञान में आया तो मैंने कहा तुम उसको थैंक्स दो कि उसने तुम्हें भगवान को मिला दिया, फोन कर दो कि तुम्हें लाखों लाखों बार शुक्रिया, तुम ऐसा न करती तो मुझे भगवान न मिलता। फिर कहा पर मैं उसको दोबारा लाना चाहता हूं, विधि तो बताओ। मैंने कहा लड़ाई रखनी है चालू इसलिए लाना चाहते हो, अरे सुखी रहने दो ना, जहां है बेचारी, इधर तुम सुखी उधर वो सुखी। लेकिन मनुष्य ऐसा कर भी नहीं पाता ना, उसकी बहुत इच्छा कि फिर से आ जाए, हमारा परिवार अच्छा चले, चाहेगा तो हर मनुष्य ही ना। तो कल से फिर आज सवेरे फोन आ गया कि भाई जी वो आ जाएगी ना वापिस। मैंने कहा आ जाएगी लड़ने के लिए तुमसे, तुम्हारे नाक में दम करेगी, सोच लो कि नहीं ऐसी विधि बताओ जो वो ठंडी हो जाए। ऐसे बहुत फोन आते हैं, एक सास का फोन आ रहा, मेरी बहू मेरे से बहुत लड़ती है, मैं हूं ज्ञान में, अब मुझे ये डर लगता है कि लोग ये कहेंगे सास ही लड़ती है, सास बदनाम है ना, वो खुद कह रही कि सास बदनाम है ना चारों ओर, बहू चाहे कितनी लड़े पर कहेंगे लोग यही, ये सास तंग करती होगी इस बहू को, कहा मुझे ये समस्या सबसे भारी पड़ रही है, मैं क्या करूं। मैंने उसे ये मुरली आज की जो पॉइंट थी, स्वभान के अच्छे अच्छे अभ्यास करो, ये बात सभी को ग्रस्त में रहने वालों को याद रखनी है, जितना अच्छा स्वमान होगा क्या होगा, सम्मान परछाई की तरह पीछे चलेगा। और दूसरी बात, देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे तो सबके प्यारे बन जाए, बहू भी बहुत प्यार करेगी और सास भी करेगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना। इन दो चीजों को यूज करेंगे सभी, देह से न्यारे होने का अभ्यास और स्वमान की प्रैक्टिस, तो इन संबंधों में बहुत मधुरता आ जाएगी। और ये जो खींचातान परिवारों में चल रही है, आजकल बहुत चल रही है, जो कुछ विदेशों में होता था अब 2-4 साल से इंडिया में शुरू हो गया, डाइवोर्स किसी की किसी से बन नहीं रही है, तो हमें इससे जरा परिवार में जो रहने वाले इसको ठीक करना है, सबके परिवार अच्छे रहें, नहीं तो जो लड़की 4 साल के बाद घर जाएगी उसका जीवन सुखी होगा क्या वहां? बिल्कुल नहीं होगा। भाई भाभी थोड़ा ही सदा रखेंगे, दुख बढ़ता जाएगा उसका। इसलिए अपने को भी ऐसा करना है, हम कुछ सहन करके चलें, हम कुछ समा कर चलें, दूसरों को सहयोग दें। कोई हमें प्यार नहीं करता तो हम प्यार दें, हाँ जी करते चलें। लास्ट में एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, किसी ने भेजी थी, आप सबके बहुत काम आएगी। सास बहू का झगड़ा था। बहू पहुंची अपने घर, उसका अंकिल बहुत तेज तराक बुद्धिमान था। कहा कि मेरी सास बहुत झगड़ती है मुझसे, मुझे कोई ऐसा जहर दो धीरे धीरे वो मर जाए, मेरा नाम भी बदनाम ना हो लेकिन वो धीरे धीरे मर जाए। कहा ठीक है, मैं एक पुड़िया देता हूं तुम्हें, ये रोज उसके खाने में डाल देना, धीरे धीरे वो मर जाएगी। लेकिन एक बात तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या? कि आज से शुरू कर दो, वो जो भी कहे, हाँ माता जी बोलो क्या सेवा है तुम्हारी, बहुत प्यार से उससे बात करना और सदा हाँ जी करना। चली गई वो रोज पुड़िया में से डालने लगी। सास बड़ी खुश कि बहू जब से घर से आई है हाँ जी करती है, बहुत प्यार से बात करती है, जो भी घर में आए अपनी बहू की महिमा करे, मेरी बहू तो देवी है, ऐसी है वैसी है, जो पहले ग्लानी करती थी ना तो इसलिए झगड़े होते थे, अब वो महिमा करने लगी। इतनी महिमा करने लगी कि ये जो बहू थी अब ये परेशान हो उठी कि ये तो मर जाएगी, मेरी सास इतनी अच्छी मैं इसको मार रही हूं। पहुंची फिर अपने घर अंकिल के पास कि अंकिल मैं वो पुड़िया तो खिला दी लेकिन मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं उसे मरने नहीं देना चाहती, अब कुछ जीने की दवाई बताओ। अंकिल ने कहा कि जहर दिया ही नहीं था, वो तो तुम्हें समझाया था, दवाई यही है कि तुमने हाँ जी किया, तुम नम्र हो गई, तुम उसकी महिमा करने लगी तो वो तुम्हारी करने लगी, घर में सुख शांति हो गई, अहम का जहर था वो मर गया और सुख शांति आ गई। ठीक है, पसंद है माताओं को? ओम शांति, ओम शांति।